ओम शांति। मुझे जो टॉपिक मिला था सोल मैकेनिक, बाबा मेरा सोल मैकेनिक, तो मेरा सो हम सब का सोल मैकेनिक है। तो 5000 वर्ष से आत्मा रूपी बैटरी चल रही है ना। तो चलते चलते 21 जन्म तो कंचन काया रूपी कार मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 63 जन्मों के द्वापर के बाद ये विकारोपी कट चढ़ जाती है आत्मा में, तो बैटरी डल हो जाती है। तो उसी बैटरी को फिर से रिचार्ज करने के लिए स्वयं सुपर मैकेनिक, सोल मैकेनिक शिव बाबा इस धरा पर आते हैं और बैटरी को फिर से चार्ज करते। तो शुरू शुरू में यज्ञ में जब शुरुआत हुई तो ब्रह्मा बाबा ने भी एक स्थूल सेवा के रूप में मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का भी कई बहनों को ड्यूटी सौंपी थी। उसमें निर्मल शांता दादी भी खास एक्सपर्ट थी, ड्राइविंग भी करते थे तो मैकेनिक का काम भी करते थे। तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम रहा तो मिस्त्री को बुलाते थे, बाकी मिस्त्री आके सिखा देता था, फिर ये खुद ही कर लेते थे, क्योंकि उसमें यंग कुमारियाँ थे ना दादियाँ उस समय, तो सब कैच कर लेते थे जल से, और वो मैकेनिक का काम भी सीख गए थे। तो स्थूल में भी ये हिस्ट्री में आता है कि कैसे दादियों ने मैकेनिक का काम किया। तो बापदादा भी हम आत्माओं का मैकेनिक बन अभी आए हैं। तो जैसे स्थूल मैकेनिक होता है गैराज में, तो ज़्यादा करके अनेक प्रकार के मैकेनिक होते हैं, बाइक मैकेनिक, कूलर मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, लेकिन ये हम यहाँ मोटर मैकेनिक की बात करेंगे। तो मोटर मैकेनिक जैसे गैरेज में गाड़ी जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो चेक करता है। तो जैसे सबसे पहले इंजन ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखते हैं। तो इंजन में भी इंजन क्या करता है, स्थूल इंजन केमिकल जो होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, वाष्प ऊर्जा में, उससे वो पिस्टन आदि चलते हैं और गाड़ी आगे चलती है। तो यहाँ भी बाप दादा आते हैं मैकेनिक बन, तो हमारा जीवन ही चेंज कर देते है ना। स्थूल जीवन था, भक्ति मार्ग का जो जीवन था, अभी ब्राह्मण जीवन में चेंज कर देते, नया जन्म मिल जाता है तो ये इंजन पूरा चेंज हो जाता है। और दूसरा है बैटरी, तो बैटरी रिचार्ज करते हैं तो उसमें भी निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव माना जो पहले जो ज्ञान सुना था भक्ति मार्ग का, गीता जैसे भी स्थूल ज्ञान जिसमें अनेक प्रकार का मिलावट था, तो ये निगेटिव हो गया ना। पॉजिटिव माना जो रियल ज्ञान है, तो निगेटिव पॉजिटिव के द्वारा हम मिश्रण से हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो अब द्वापर से लेके अभी कलयुग अंत तक 63 जन्म हम ये अपनी बैटरी को चार्ज कराते रहे। तो अनेक महात्माओं के पास गए, गुरुओं के पास गए और सत्संग आदि करते रहे, वहाँ एक प्रकार से बैटरी चार्ज करने के लिए जाते थे, लेकिन वो परफेक्ट चार्ज नहीं हो पाती थी, कुछ ना उनको क्योंकि फॉल्ट मिल नहीं पाता था, डिफेक्ट कहाँ है। तो अभी संगम पर सुपर मैकेनिक आके हमें पूरा नॉलेज देके है ना, सही अपने को ज्ञान मिल जाता है, तो हम एकदम चलने लग पड़ते हैं। उसी प्रकार जो स्थूल में मैकेनिक जो होता है तो वो गाड़ी में आयल पानी देखता है, आयल है, पानी कितना है, ग्रीसिंग करना है, तो ये एक प्रकार का आत्मा के लिए खुराक है, ज्ञान है। बाबा दादा ने जो ज्ञान दिया यही हम आत्माओं के लिए ग्रीसिंग है। उसी प्रकार मिरर होता है गाड़ी में, तो एक तो होता है ड्राइवर के साइड में मिरर और एक होता है आगे में, तो पीछे की गाड़ी आ रही है तो दिखाई देता है मिरर के द्वारा, लेफ्ट राइट दोनों साइड। तो हमें भी अपने जीवन में अभी त्रिकालदर्शी बन के हम आगे पीछे का भाप लेते, त्रिनेत्री बन जाते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तो ये सुपर मैकेनिक बनाता है शिव बाबा ये ज्ञान देकर। और ड्राइंग में जैसे एसी होती है, कार में एसी होती है ना, तो एसी को इस एसी मतलब गर्म को ठंडा करने के लिए, तो अभी का वायुमंडल कैसा है, पूरा एक प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है। और अभी हम ब्राह्मण जीवन में ले तो एसी मिल जाता है, मतलब जीवन में शीतलता आ जाती है, क्रोध समाप्त हो जाता है। फिर हवा होती है गाड़ी में, टायर में हवा कम ज़्यादा होती है, तो वो भी चेक करते हैं मैकेनिक। तो हमारे जीवन में भी उमंग उत्साह का हवा कम तो नहीं हुआ, तो ये भी चेक कर रहे हैं। और अनेक प्रकार के हैं, और क्या होता है गाड़ी में, हाँ ब्रेक, अटेंशन का ब्रेक। बाप दादा ने हमको बोला है कि कोई भी श्रीमत है उस अनुसार चलना है और अपने को अटेंशन देना है, तो जहाँ चाहे वहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो ये अटेंशन का ब्रेक है, हाँ बैठने की सीट है, ये सामान की सीट है, कोई भी सामान लेके हम बैठ जाएंगे तो ये सीट भी ठीक हो, हाँ सीट बेल्ट हो तो कहाँ भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ बाप दादा के साथ रखते, मतलब सीट बेल्ट हो गया। हाँ एक्सीलेटर ये अपना स्पीड है, कम ज़्यादा होता है ना, तो अपना पुरुषार्थ की गति कम है या ढील, कम है या ज़्यादा है, वो उस पर कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ ढीला तो नहीं है, तो बाप दादा बोलते तीव्र पुरुषार्थ करो, तो एक्सीलेटर द्वारा हम बढ़ा देते हैं। तो ये अच्छा क्लच के द्वारा गियर चेंज करते हैं, तो कहाँ कौन सा लेना है ज्ञान के पॉइंट के द्वारा, कहाँ कौन सा मतलब यूज करना है, वो उससे हम क्लच दबाते हैं। अच्छा ओम शांति।
ओम शांति। जब मुझे जो मुख मिला था, जो कई सारे संबंधों में बाबा मेरा पहरेदार है, तो बाबा हमारा पहरेदार बनता है, तो हम सब आज संगम पर किसी भी क्षेत्र पर आम है, हम सबको एक ही जैसे ड्यूटी थे किसी का नहीं, तो संगम युग पर बाबा ने हम सबको हर संबंधों से, अगर मुझे याद करोगे हर संबंधों से, अगर मुझे याद करोगे जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, उस तरीके से अगर उसको याद करेंगे तो हम सबको सपोर्ट मिलता है, और बाबा साथ में हैं, और बाबा को साथ में रखने के लिए उसी तरीके से हम याद कर सकते। तो ऐसे 8 संबंध तो हम सबको पता है, फिर भी यह बहुत सारे संबंधों से भी याद किया जा सकता है, इसका प्रयोग चल रहा है यहाँ पर। तो इस प्रयोग के आधार से हम सब अनेक संबंधों से अगर याद करेंगे, तो बाबा ने बोला कि यह ज्ञान तो रूखा सूखा नहीं है, कि यह ज्ञान तो रमणीक है और सदा ही हम उसके साथ रह सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें हमने अनुभव किया कि बाबा मेरा पहरेदार है, बाबा उसील बजाता रहता है और कहता है कि है ना, जागे रहो, खबरदार होशियार, जागे रहो। तो इसमें अलर्ट करता है बाबा हम सबको। तो बाबा तो हमारा ऐसा पहरेदार है कि दुनिया में जो पहरेदार होते हैं उनको हर समय बुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन बाबा ATS है, किसी भी समय हम सबको सिक्योरिटी प्रदान करता है। किसी भी समय बाबा कहते हैं कि मुझे ऐसा टाइम नहीं लगता है जैसे कि दुनिया में जो भी होते हैं उनको बुलाने में, थोड़ा देर रुको, कपड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है। बाबा कहता है कि सेकंड से भी कम समय में मैं आ जाता हूँ, इसीलिए बाबा 24 घंटा हमारा पहरा देते ही रहता है। तो बाबा की जो पहरेदार होने के कारण से हम सबको इतना मनोबल बढ़ जाता है और बाबा को हम पल पल साथ में रख सकते हैं। दूसरा है कि बाबा ऐसे पहरेदार है कि बाबा कभी पेमेंट नहीं लेता है उसके रिटर्न में हम सबको और ही ज़्यादा तो पहरेदार है वो, तो कभी भी हम आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा होती है सरकार की अथवा जो बड़े लोग होते हैं उसका सबसे ज़्यादा खर्चा सिक्योरिटी को देने में होता है, क्योंकि जान सबसे सबका प्यारा है और इतना रिक्स वाला दुनिया है, इसलिए उससे बचने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और तीसरा में है कि बाबा कभी भी भत्ता नहीं लेता है दुनिया में तो भत्ता भी देना पड़ता है ना? हाँ, भत्ते उसके एक्स्ट्रा खर्चा देने पड़ते। तो चौथा में है बाबा का कभी भी जैसे कि सिक्योरिटी वालों को जूता देने पड़ते हाँ, तो बाबा कभी भी जूता ड्रेस नहीं चाहिए बाबा को ना उनका अपना पैर है ना बॉडी है, इसीलिए ना जूता चाहिए ना कपड़े चाहिए, ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। और बाबा को यहाँ जैसे हम लोग ने भी सिक्योरिटी में भाइयों को रखा है तो उनको यहाँ कमरे देने पड़ता है, कमरे देना पड़ता है और उनको उसी तरीके से सुविधा देने पड़ते हैं। तो बाबा का तो अपना कमरा भी नहीं, बाबा बोलता है कि परम धाम आ जाओ, सबका कमरा एक ही है, वहीं बाबा हम सबको आमंत्रण करता है। तो और यहाँ जो सिक्योरिटी वाले होते हैं तो टाइम टाइम पर कभी चाय देने पड़ते हैं, कभी पानी देने पड़ते हैं, कभी पानी भर के लाते हैं। तो बाबा तो हम सबको ना हमारा चाय पीता है ना पानी पीता है, हैं सबको पानी पिलाता है तो और बाबा कभी छुट्टी में नहीं जाता है, हाँ वही जो भी है। तो बाबा कभी छुट्टी नहीं लेता कि आज बहुत दिन हो गया है ड्यूटी करते करते मैं थक गया हूँ बच्चे, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट में जाता हूँ। बाबा ने बोला पूरे संगम पर तुम्हें है ना, पूरे संगम पर तुम्हें ऐसे जो सेवा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ, जब तक तुम बच्चे संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को नहीं प्राप्त करोगे तब तक मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करता रहूँगा। तो बाबा जैसे कि कभी भी छुट्टी नहीं लेते। तो उसमें उसके बाद बाबा ने क्या बोला, बाबा को न गन चाहिए न लाठी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में तो सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे खर्चा आते हैं, उसमें गन चाहिए लाठी चाहिए। हाँ तो इस तरीके से, और बाबा को इस प्रकार की कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर बाबा उसमें हम सबको फिर क्या करते हैं, बाबा में कभी डाउट नहीं है, क्योंकि उसको बाबा ने जो रिक्स लिया है पूरे जीवन भर के लिए लिया है, पूरे संगम के लिए लिया है। बाहर की दुनिया में सिक्योरिटी से कितने सारे रिक्स होते हैं कि उसी के द्वारा उसके मालिक के ऊपर ही अटैक होता है कई बार, जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री का जो समय हुआ था तो अपने सिक्योरिटी के द्वारा ही हुआ था। डाउट होता है कभी भी कुछ न हो जाए, कभी भी कुछ उसके लिए कोई लोग देते हैं तो उस अपने ऊपर ही खतरा हो जाता, अपने सिक्योरिटी अपने ऊपर ही टूट पड़ता है लेकिन हमारा बाबा कभी भी इस प्रकार के बच्चों के ऊपर ऐसा शंका करने की कोई डाउन संकल्प ही नहीं रहता है कि बाबा 100% मेरा है और बाबा मेरा रक्षा करके ही रहेगा, इस प्रकार की स्मृतियाँ रहती है। तो फिर बाबा जेड ग्रुप की सिक्योरिटी देते हैं सबको, जेड प्लस, क्योंकि उस पर चार चौबंद हैं, चौक चौबंद सब प्रकार की सिक्योरिटी होती है जो चौक चौबंद। तो इस प्रकार की सिक्योरिटी होती है कि 24 घंटा, जैसे कि दुनिया की सिक्योरिटी हम लोग अंदर होते हैं तो बाहर होता है, लेकिन बाबा तो कभी भी बाबा को वॉशरूम में जाओ कहीं भी जाओ याद कर सकते तो वहाँ भी बाबा हम सबको अटेंशन दिलाते ही रहता है। तो बाबा ऐसे सिक्योरिटी है हमारा जो पहरेदार, हमारा अच्छी रीति से अगर बाबा को प्यार से याद करते हैं तो हमारा तन की भी सिक्योरिटी हो गई, मन की भी हो गई, धन की भी हो गई, हमारे जन की भी सिक्योरिटी कर देता है वो, सबका हवाला कर देता है और कहीं हमको ऐसा रिस्क लेना नहीं पड़ता है। बाबा आगे है तो हम सब, और बाबा को कभी भी ओवर टाइम देना नहीं पड़ता है 24 घंटा में ज़्यादा 3 शिफ्ट होते हैं अभी सिक्योरिटी वाले, एक जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, लेकिन अगर बाबा को हम इस तरीके से अगर पेमेंट भर दिया जाए है ना व्यक्ति की, तो सारी हवा निकल जाएगी 24 घंटा ओवर टाइम, बिना ओवर टाइम बाबा सेवा देता है। तो इसी कारण से बाबा संसार का सबसे प्यारा है, संसार की सभी मनुष्य आत्माएं इसीलिए भगवान को दिल से प्यार से याद करते हैं किसी भी समय किसी भी घड़ी उपस्थित होने के लिए। जैसे कि कभी बाबा को कोई लंदन में याद कर रहा है, कोई अमेरिका में याद कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई प्लेन में कर रहा है, कोई ट्रेन में कर रहा है, फिर भी बाबा हाँ उसी समय 99 सेकेंड में पहुँच जाता है तो इसका मतलब बाबा की जो पहरेदारी ये संगम भर के लिए है, तो ये पूरे जीवन भर गुणगान गाते रहे तो भी कभी ये पूरा होने वाला नहीं। तो ये गुणगान गाते रहें और बाबा को साथी बनाए और सिक्योरिटी बनाए, पहरेदार बनाए, तो हम सबका कल्याण, हम सबका भला समय हुआ। ओके, ओम शांति।
शांति। जब बच्चों की बात आती है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और श्रवण कुमार और ध्रुव प्रहलाद ऐसे बच्चों की बात आती है, तो सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। हमारे फादर जो थे वो 3 भाई थे, तो उसमें से जो भाई बड़े थे सबसे छोटे हमारे फादर थे, तो हमारे फादर के कोई बच्चे नहीं थे। तो दादी जी हमारे थे वो कथे सुनने गए कहीं पर, कथा भागवत, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारे कोई बच्चे माने छोटे बच्चे के कोई बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा करो पंडित जी ऐसा कोई वरदान दो जो हमारे बच्चे के बच्चे हों तो उन्होंने साथ में वो एक केला लेकर गए थे, तो उन्होंने केला रखा और हाथ जोड़कर बोले कि हमारे बच्चे के बच्चे ने ऐसा कोई आशीर्वाद दो बच्चा पैदा हो, वो लड़का ही हो, वो श्री कृष्ण जैसा हो तो पंडित जी ने केले की तरफ देखा तो बोले कि केला बहुत ढीला था तो क्या बच्चा तो पैदा होगा मगर बिल्कुल ढीला पैदा होगा तो पब्लिक बहुत सारी थी तो हंसने लगी। तो जब हम कॉलेज में जाते थे तो टीचर मारा था वो पहले हंसाता था बहुत, फिर उसके बाद में ऐसा होमवर्क देता था जो बच्चे कर नहीं पाते थे। तो जब हम एक बार हमको होमवर्क दिया उसने कि विद्यार्थी के लक्षण बताओ, तो हमको पता ही नहीं था, दूसरे दिन गए उसने पिटाई की हमारा, तो उसने बताया कि विद्यार्थी के काक चेष्टा बकुक ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलश्रम, तो उसने ऐसा होमवर्क दिया पिटाई की, तब से आज भी हमको याद है और फिर बताते श्री श्रवण कुमार के बारे में, तो श्रवण कुमार अपने माँ बाप की कितना टोकरी से और कितनी लंबी यात्रा की, तो हमारा बच्चा है वो सुबह ही उठते ही हमको तीनों लोकों और चारों युगों की ऐसी यात्रा कराता है जो हम अपने माँ बाप की भी करा सकेंगे। ओम शांति।